निक ने मिस्टर मुखर्जी से बात करके सबके लिए 5 दिन की छुट्टी ले ली थी। एमा और निक कोलकाता में ही रुक रहे थे ताकि जन्नत बाजार की सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकें। दोनों ने शादी वाले दिन ही जाने का डिसीजन किया था। सब अपनी पैकिंग कर चुके थे। निक अपने कमरे में बैठकर पैकिंग कर रहा था कि प्रियल उसके पास गई। निक ने देखा कि प्रियल अंदर मुस्कुराती हुई उसके पास आई। प्रियल ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी ताकि वो निक को इम्प्रेस कर सके। प्रियल को देखते ही निक को हंसी आने लगी। निक ने खुद की हंसी कंट्रोल की और बिना कुछ कहे अपने मन में कहा, ये फिर से उन्हीं हरकतों पर उतर आई है। प्रियल निक के पास बैठ गई। परी को बता दिया ना, वो भी आ रही है ना? निक ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और मुंह फेर कर बोला, हाँ बोल दिया है, वो बस पहुंचती ही होगी। तुम्हें कोई काम था? प्रियल ने कहा, क्या मैं बिना काम के आपके पास नहीं आ सकती? बोलते हुए वो निक के और पास आकर बैठ गई। भूख लगी होगी ना आपको, आपने खाना नहीं खाया, बताओ मैं आपके लिए खाना बनाकर लाऊं? निक ने कहा, तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रह लूं, और ये बकवास जैसी हरकत करके इम्प्रेस करने का बंद करो, मुझे हंसी आ रही है। सामने वाला कुछ एफर्ट्स कर रहा है इसका मतलब है कि वो कुछ चाहता है, प्रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा। और सामने वाला जो चाहता है वो नहीं हो सकता, तो सामने से थोड़ा साइड हट जाओ, मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, कहकर निक वहां से जाने लगा। प्रियल जल्दी से खड़ी हुई और निक को पकड़कर बेड पर बैठाया। उसके बाद वो जबरदस्ती निक की गोद में बैठ गई और कहा, मेरा दिल करता है कि मैं आपकी इन नीली आंखों में डूब जाऊं। अच्छा, वैसे ये जो भी था बहुत बकवास था। कुछ दिन पहले तो मेरी इन्हीं नीली आंखों से इरिटेट हो रही थी। प्रियल निक की आंखों में देखते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई कि तभी पीछे से परी और प्रियांक आ गए। परी को तो पता था कि निक के साथ प्रियल ही है, जबकि प्रियांक को सरप्राइज देने के लिए परी ने अभी तक उसे प्रियल के मिलने की बात नहीं बताई थी। निक भी प्रियल को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने प्रियांक के आने की बात प्रियल से छुपाई थी। प्रियांक ने हैरान होकर कहा, जीजू आप किसके साथ हो? परी ने अपने हाथों को आंखों पर लगाया और कहा, लगता है प्रियांक हम गलत टाइम पर आ गए। प्रियांक की आवाज़ सुनकर प्रियल जल्दी से मुड़ी तो उधर प्रियांक भी प्रियल को देखकर हैरान रह गया। प्रियांक पूरे 5 साल बाद प्रियल से मिल रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। प्रियांक भागकर प्रियल के गले लगकर रोने लगा तो प्रियल भी इमोशनल हो गई। परी ने निक के पास आकर धीरे से कहा, लगता है आपको मनाने के लिए पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, साड़ी एंड ऑल। निक ने कहा, हाँ तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल है, तुम जानती हो ना इस बात को, कभी तो उसे गुस्सा दिखाना होता है तो कभी जबरदस्ती करीब आना होता है, लेकिन इस बार उसकी बिल्कुल नहीं चलने वाली, इस बार वो पास आई तो मैं उसे कभी दूर नहीं जाने दूंगा। निक मुस्कुराते हुए प्रियल और प्रियांक की तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे से सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लगे हुए थे। प्रियल और प्रियांक देर रात को हॉल में बैठकर बात कर रहे थे तो वहीं जैन और आयशा भी अपने गिले शिकवे मिटाकर ये प्लानिंग कर रहे थे कि आयशा के अब्बू को कैसे मनाया जाए। प्रियल और प्रियांक बात कर ही रहे थे कि तभी परी उनके पास आई। परी ने प्रियल को हक करते हुए कहा, प्रियांक अब हम अपनी प्रियोदी को कभी हमसे दूर नहीं जाने देंगे। हाँ दी प्लीज अब कहीं मत जाना, जीजू का तो तुझे पता ही है, लेकिन हम भी तेरे बिना नहीं रह पाते हैं। प्रियांक के मुंह से निक का नाम सुनकर प्रियल को उसका ख्याल आया। उसने परी से पूछा, परी निक कहाँ है, काफी देर से दिखाई नहीं दे रहे? अरे वो अंदर कमरे में आराम से सो रहे हैं, परी ने जवाब दिया। प्रियल ने निक के सोने की बात सुनी तो उसका मुंह बन गया। उसने सोचा, हाँ वो आराम से तो नहीं सोएंगे, यहाँ मेरी नींदें उड़ी हुई हैं और खुद आराम से। रुको मैं अभी बताती हूँ उन्हें। दी तुझे भी सो जाना चाहिए, कल बहुत काम होने वाला है। जैन भाई और आयशा दीदी पास वाले घर में है, वहां एक रूम खाली होगा, मैं और परी वहां चले जाते हैं, तुम अपना देख लेना, प्रियांक ने कहा। वो भी यही चाहता था कि निक और प्रियल दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। परी ने कहा, हाँ प्रियांक चल हम तो चलते हैं। प्रियुदी इस घर के एक रूम में ऑफिस बनाए ना, फिर तो जीजू के पास ही। प्रियल ने उनकी बात सुनकर गुस्से में कहा, चुप करो दोनों, ये जो तुम दोनों प्लानिंग कर रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है, इतने भी बड़े नहीं हुए हो, मेरे से तो छोटे ही हो। परी ने उठते हुए कहा, सिर्फ 1 साल। उसकी बात सुनकर प्रियल ने उसकी तरफ मुंह बनाया। प्रियांक और परी वहां से सोने चले गए जबकि प्रियल अभी भी वहीं बैठी थी। प्रियल ने कहा, सोने तो मैं आपको भी नहीं दूंगी, लेकिन अभी कोई नहीं है यहाँ, आरोही को कॉल कर लेना चाहिए। प्रियल ने चारों तरफ देखा और फिर आरोही को कॉल किया। हेलो आरू, वहां सब ठीक तो है ना? आरोही ने कहा, हाँ प्रियु सब ठीक है, तू बता तेरा मिशन कैसा चल रहा है? बस मत पूछ यार, चारों तरफ बस रायता ही फैला हुआ है, एक तो इस मिशन के चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ रहना पड़ रहा है, ऊपर से तुझे नहीं पता न जाने कहाँ से निक भी इस मिशन में इन्वॉल्व हो गए। प्रियल आरोही के टच में थी, काफी समय से बात नहीं होने की वजह से प्रियल को उसे निक के बारे में बताने का मौका नहीं मिला। आरोही ने चौंकते हुए कहा, व्हाट, तू निक सर से मिली? इसका मतलब तुम दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया? प्रियल ने कहा, मैं तुझे फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अब मुझे सब कुछ सही करना है। तूने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता तो दिया ना? आरू, निक को सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, प्रियल ने धीमी आवाज में कहा। और उसके अलावा? उसने पूछा। प्रियल ने कहा, बाकी का सच मैं अभी नहीं बता सकती, जब सही वक्त आएगा और ये मिशन खत्म हो जाएगा तब उन्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। तो जानती है ना वो कितने इमोशनल हैं, अगर उन्हें सच पता चला तो वो सब कुछ बीच में छोड़ देंगे। आरोही ने कहा, अच्छा तो फिक्र मत कर, यहाँ सब ठीक है और मैं सब अच्छे से संभाल रही हूँ, तू कॉल करने का रिस्क मत लिया कर, मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रियल ने कहा, थैंक यू सो मच आरोही, एक तू ही है जिसकी वजह से मैं बेफिक्र होकर इस मिशन पर आई। पिछले 3 सालों में किसी ने मेरा साथ दिया हो या ना दिया हो, तूने एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा, इन सबको छोड़ो, पता है जैन और आयशा शादी करने वाले हैं। आरोही ने कहा, मैंने हम तीनों की फ्रेंडशिप को बहुत मिस किया, वो भी अच्छे दिन थे ना जब इंस्टीट्यूट में हम तीनों साथ रहते थे। प्रियल ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, वो भी अच्छी लाइफ थी, बिल्कुल बेफिक्र। मेरी शादी तो पहले ही हो गई थी, वहां से आकर तुमने भी कर ली, एक आयशा ही रही थी, उसकी भी शादी होने वाली है, सब अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं। प्रियल आरोही से बात कर रही थी कि तभी पीछे से निक आया, उसने देखा कि प्रियल किसी से फोन पर बात कर रही है। उसे यूं बात करते देख निक ने सोचा, ये आधी रात को छुपकर किससे बात कर रही है, कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं? तुझे नहीं पता मैंने तुझे कितना मिस किया, तुम मेरी लाइफ में एंजल की तरह हो जिसने हर पल मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि निक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने? निक ने पूरी बात भी नहीं सुनी और जल्दी से प्रियल के पास आकर उसका फोन छीन लिया। उसने उसका फोन अपने कान पर लगाया और कहा, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? उधर निक की आवाज सुनकर प्रियल ने जल्दी से कॉल काट दिया। उसकी इस हरकत से प्रियल थोड़ी नाराज हुई और गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, फोन दीजिए मेरा वापस।
किससे बात कर रही थी तुम? अब ये फोन मेरे पास रहेगा। मेरी आवाज सुनकर सामने वाले ने फोन काट दिया। कौन था वो जिससे तुम मेरी बुराइयां कर रही थी? क्या बकवास जैसी बात कर रहे हो, आरोही थी कॉल पर, प्रियल ने आंखें तरेर कर जवाब दिया। निक ने प्रियल को फोन देते हुए कहा, हाँ तो मुझे क्या, किसी से भी बात करो, वैसे भी हमारा डिवोर्स आने वाला है तो तुम जिसे चाहो उससे शादी कर सकती हो। उसके ऐसा कहने से प्रियल उदास हो गई। जब इन 5 सालों में ही किसी और से शादी नहीं की तो अब कैसे कर सकती हूँ, कहकर प्रियल वहां से जाने लगी कि पीछे से निक ने आवाज देकर कहा, रुको प्रियल, मुझे कुछ बात करनी है। डोंट वरी, मैं मना लूंगी आयशा के अब्बू को, मुझे नींद आ रही है निक, गुड नाइट। प्रियल वहां से रूम में सोने के लिए चली गई। निक ने नोटिस किया कि प्रियल की आवाज भारी थी, मानो वो किसी दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। निक ने कहा, इसे क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से ये रोने लग जाए। कुछ भी हो, मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। निक उसी वक्त प्रियल के पास अंदर कमरे में गया तो वो अकेले बैठकर रो रही थी। निक को देखकर प्रियल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। निक ने कहा, क्या हुआ गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा था, तुम प्लीज रो तो मत। हम फिर से 6 साल पीछे नहीं जा सकते क्या? मुझे नहीं चाहिए ये लाइफ, हम कितने खुश थे पहले, आप मुझसे कितना प्यार करते थे, हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं था, मम्मी भी हमारे साथ थी। काश मैं कर पाता। चलो तुम सो जाओ और परेशान मत हो, तुम्हें परेशान देखकर परी और प्रियांक भी दुखी हो जाएंगे। निक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सहलाने लगा। प्रियल को शांत करके निक वहां से हॉर में आकर सो गया। अगली सुबह सब लखनऊ के लिए निकल रहे थे, सब काफी खुश थे और आपस में हल्की फुल्की बात कर रहे थे। हमेशा की तरह मीरा की नज़र बाहर थी। जब उसने उन सबके हाथ में बैग देखा तो वो घबरा गई और दौड़कर बाहर आई। मीरा ने निक का हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। उसकी इस हरकत से निक के साथ साथ वो सब चौंक गए। निक ने उसका हाथ छटक कर कहा, क्या बोल रही हो ये तुम, आर यू मैड? मीरा को उसकी बात पर रिएक्ट करने का मौका मिलता उससे पहले चंद्रकांत जी भी बाहर आ गए। चंद्रकांत जी ने वहां आकर पूछा, क्या हुआ मीरा बेटा, चिल्ला क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ, मैं तो इनसे बस पूछ रही थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे। अचानक मीरा का टोन बदल गया। लेकिन अभी तो तुम, प्रियल ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी निक बीच में बोल पड़ा, वो हम लोग कुछ काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं तो हमें अब चलना चाहिए। चंद्रकांत जी और मीरा को बाय बोलकर वो सब लोग वहां से चले गए। मीरा के बिहेवियर को किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय प्रियल के। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की निक के लिए पोजेसिव हो रही थी और निक ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कल को उस लड़की ने हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो? प्रियल अभी तक मीरा के बर्ताव से परेशान थी और उसी के बारे में सोच रही थी। कहाँ खोई हो प्रियल, बैठो गाड़ी में, निक ने कहा। प्रियल ने कहा, तुम सब लोग एक गाड़ी में चले जाओ, मुझे निक के साथ अकेले जाना है। निक ने हैरानी से पूछा, आर यू सीरियस, मतलब हम दोनों एक गाड़ी में? श्योर होना तुम, रास्ते में मुझे कहीं मार के फेंक मत देना। प्रियल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। प्रियांक ने कहा, ओके फाइन, हम लोग एक गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे, चलो फिर मिलते हैं लखनऊ में। जैन, आयशा, परी और प्रियांक एक गाड़ी में चले गए, जबकि निक और प्रियल एक गाड़ी में लखनऊ जा रहे थे। निक को अभी भी प्रियल की बातों पर हैरानी हो रही थी। निक कार ड्राइव कर रहा था, जबकि प्रियल उसके पास में बैठी अभी भी मीरा के बारे में ही सोच रही थी।